शांति। बहुत धीर से आप बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हैं। योगी खेती की महानता क्या है वो आपको बताई गई। अब इतनी सारी बातें पिछले 2-3 दिनों से आप सुन रहे हैं और बहुत कुछ देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आप कहाँ आए हैं। ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ बहुत ऊंच प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। जीवन में हम दिव्य गुणों की धारणा करते हैं और बहुत बड़ा सामाजिक कार्य देश के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही भारत बहुत ऊंचा था, महान था, श्रेष्ठ था। और ये भी परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि ये फिर से बनना है। इसलिए कुछ बातें जो निराशाजनक लगती है वो बहुत ही शीघ्र परिवर्तित होगी और फिर से यह भारत देश समृद्ध देश, खुशहाली वाला देश अवश्य बनेगा। लेकिन उसके लिए परमात्मा का क्या प्लान है, कैसे वो कर रहे हैं, कैसे आज से 81 वर्ष पूर्व परमात्मा ने खास भारत और विश्व परिवर्तन का कार्य आरंभ किया है, वो कुछ मिनटों में आपको हम बताना चाहेंगे। अभी अभी आप सबने गीत सुना, भारत देश में कौन जन्मा। उस परमात्मा शिव पिता की के माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा परमात्मा ये कार्य करवा रहे हैं। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनका पूर्व नाम क्या था, कैसे ये सारा कार्य शुरू हुआ, वो कुछ बातें आपको देना चाहेंगे। और कैसे परमात्मा ने एक यज्ञ रचा है, जब जब आपत आती है, कोई आपदा होती है, कोई भीड़ पड़ती है, कोई कष्ट आता है, तो यज्ञ रचे जाते हैं। तो परमात्मा ने भी एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा है, पर इस यज्ञ में हमने क्या आहुति दी है, वो जव तिल घी की आहुति की बात नहीं है, पर ये अपना जीवन, तन, मन, धन, यही आहुति में हम दे रहे हैं, ताकि भारत खास और विश्व आम परिवर्तित होकर फिर से स्वर्गीय संसार ये दुनिया बन जाए। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, उनकी पूरी जीवन कहानी आपको मैं सार में बताऊंगी। मेरा भी यह सौभाग्य रहा कि पिता श्री जी से मेरी बहुत बार मुलाकात हुई, छोटी थी मैं, लेकिन मेरा ये बहुत बड़ा भाग्य था, क्योंकि 1960 में, आज से कितने वर्ष पूर्व हम इस संस्था से जुड़े और आज 2017 है, तो मानो 60 वर्ष से भी अधिक हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और पिता श्री ब्रह्मा बाबा के हम संपर्क में आए, बहुत से वरदान उनसे प्राप्त किए और आज मैं अपने आप को इतना धन्य समझती हूँ कि उनके ही वरदानों के निमित्त आज परमात्मा ने हमें ये स्थान दिया है। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा जिनको हम प्रजा पिता ब्रह्मा कहते हैं, आदि पिता, प्रजा पिता, सारी प्रजा का पिता कौन थे, कैसे उन्होंने ये प्रजा रची। वैसे तो हम मानते हैं कि परमात्मा ही रचयिता है, लेकिन प्रजा पिता ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। तो परम पिता परमात्मा तो हम सबका एक है, वो आत्माओं का पिता है, और शरीर का पिता तो हर एक अपना अपना है, वो लौकिक पिता है। लेकिन ये है हमारे अलौकिक पिता, जिस अलौकिक पिता के द्वारा परमात्मा ने ये यज्ञ रचा, और उनके एक मानो बीज से आज यह कितना बड़ा वट वृक्ष बनकर तैयार हुआ है। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने जो बीज रोपा, आज 130 देशों से भी अधिक, 40 देश अभी बढ़ गया है, 140 देशों से भी अधिक देशों में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य चल रहा है। और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित जीवन व्यतीत कर रही है, और आप जैसे लाखों परिवार नियमित विद्यार्थी बन करके ईश्वरीय सेवाओं का लाभ लेते हैं। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा? उनका पूर्व नाम दादा लेखराज था, लखीराज बाबू नाम से आप बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे। 1876 में आपका जन्म हुआ था हैदराबाद सिंध में, उसके भी एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ था। परिवार बहुत साधारण था, इनके पिता उस समय के कोई प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। तो साधारण परिवार में जन्मे, और कैसे एक जीवन काल में ही उन्होंने इतना ऊंचा औदा प्राप्त किया, जो हीरे जवाहरातों के जेवर बनाते थे और राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजों को बेचते थे। मानो जितने साधारणता से आप पैदा हुए, उतने ही ऊंच कोटि के आप बन गए एक ही जीवन काल में। ये अवश्य उनकी बहुत बड़ी बौद्धिक शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति थी, और परमात्मा ने उनको ही पसंद किया इस ईश्वरीय कार्य के लिए। तो इनका परिवार बहुत सुखी परिवार था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे थे, और खुशहाल परिवार, लायक पत्नी, घर को सुखी बनाने वाली। लेकिन जब उनकी उम्र 60 वर्ष की हुई 1936 में, तब उनके अंदर में बहुत वैराग्य आ गया। सब कुछ था जीवन में, कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस बात का वैराग्य, इस संसार को देख करके कि अगर ये भगवान की दुनिया है तो इतना दुख क्यों है, इतनी अशांति क्यों है, इतना पाप क्यों है, इतना भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, ये सब क्यों है। ये तो आज से 81 वर्ष पहले की बात है, आज अगर वो स्थिति देखे तो न जाने कितने गुना अधिक ये सब पापाचार बढ़ गया है। तो उस समय भी उनके अंदर में बहुत कुछ प्रश्न थे, और वो अक्सर भगवान से किया करते थे कि हे भगवान, इतना दुख आपकी रची हुई दुनिया में क्यों है। तो क्या परमात्मा कभी ये संसार सुखमय भी था, जो फिर से बन सकता है, क्या ऐसे भी हो सकता है। हम कौन है, ईश्वर कौन है, सत्य क्या है, ये सब रचना क्या है, बहुत कुछ मन में प्रश्न थे। और अक्सर करके बाबा अपने गुरुओं के पास जाते थे, बहुत गुरु किए उन्होंने अपने जीवन काल में। तो सत्य की खोज के साथ साथ भक्ति भी उनकी पूर्ण रूप में थी। भक्ति भी करते थे, दानी भी बहुत थे, भक्त बड़े थे, सब कुछ खूबियां थी उनके अंदर, लेकिन साथ साथ सत्य को जानने की भी खूबी थी। और वो सत्य को जानने के लिए बाबा ने बहुत कुछ भ्रमण किया, अनेक गुरुओं के पास गए, अनेक मंदिर गए, अमरनाथ की भी यात्रा की कि कुछ ईश्वर का सत्य मुझे प्राप्त हो, ये मन का भटकना बंद हो। और कैसे एक दिन की बात है कि अचानक बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। ये 1936 में, आज से 81 वर्ष पूर्व। आप विष्णु के ही भक्त थे, उनकी ही भक्ति करते थे और उनसे ही वरदान मांगते थे, खुशहाली मांगते थे, शांति मांगते थे, कि अचानक उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और विष्णु चतुर्भुज का उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुआ, उनके ही इष्ट का साक्षात्कार उनको हुआ और विष्णु चतुर्भुज ने उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे समान हो। अब ये तत्त्वम का वरदान पाकर बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इन जैसे कैसे हूँ। और विष्णु के कई अलग अलग स्वरूप बाबा ने साक्षात्कार में देखे और एक एक स्वरूप ने उनको वही दर्शन दे करके वरदान दिया कि मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ, तुम भी मेरे समान हो। अब ये वरदान प्राप्त कर, ये साक्षात्कार कर, बाबा के मन में प्रश्न बहुत उठे कि ऐसा वरदान मुझे किस भाव से मिला है, मैं जैसा तो हूँ नहीं, ये तो मेरे इष्ट है, मेरे भगवान है, मैं तो इनका दास हूँ, सेवक हूँ, मैं इनके सामने क्या हूँ। लेकिन इस वरदान का अर्थ पूछने के लिए बाबा गुरुओं के पास जग गए। तो एक जो उनके उस समय के मुख्य गुरु थे, उन्होंने थोड़ा सोच करके उसका उत्तर दिया कि हो सकता है भगवान ने आपको निमित्त बनाया है किसी महान कार्य करने के लिए, इसलिए आपको कहा होगा आप मेरे जैसे हो। तो बाबा को लगा कि मुझे भगवान का कार्य करना है तो वो भी हमें बताए क्या करना है, मैं तैयार हूँ, जो मुझे आदेश ईश्वर से प्राप्त होगा मैं करने लिए तैयार हूँ। भक्ति भावना तो उनकी चरम पर थी ही। तो जब गुरु ने ये बात सुनी तो गुरु ने कहा कि उसके लिए आपको कुछ एकांतवास में जाना होगा, आप ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ एकांतवास आपको मिले और हो सकता है आपको विष्णु के और भी अनुभव हो और आपको भगवान से कुछ ऐसा आदेश मिल जाए कि आपको क्या करना है। तो बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे तो उनकी बिजनेस जो थी वो कलकत्ता में थी। कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा शोरूम था जहाँ हीरों के जेवर बेचते थे और अंग्रेज लोग वहीं से भारत में आते थे और राजा महाराजाओं से उनका संपर्क था। लेकिन बाबा ने सोचा कि मुझे कुछ ईश्वर का कार्य करना है, तो बाबा कुछ समय के लिए बनारस चले गए और बनारस में एकांतवास किया उन्होंने। एक मास तक लगातार एकांतवास करते समय बाबा को तरह तरह के साक्षात्कार हुए। एक साक्षात्कार उन्होंने देखा, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार, जिसमें बाबा ने देखा कि तीन रूप से इस कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है, अणु युद्ध के रूप में, ग्रह युद्ध के रूप में और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में यह कलयुगी सृष्टि का महाविनाश हो रहा है। ये बाबा ने साक्षात्कार में देखा। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि अगर ये सृष्टि ऐसे ही विनाश हो जाएगी फिर हे भगवान ये दुनिया तुमने बनाई क्यों, फिर हे भगवान मुझे क्या करना है, मुझे वो भी तो बताएं। तो फिर कैसे, एक दिन की बात है कि बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ जिसमें बाबा ने देखा एक अखंड ज्योति का महतत्व जिसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारों की तरह चमक रही है। और धीरे धीरे बाबा ने देखा कि वो सितारों की तरह आत्माएं नीचे सृष्टि पर आने लगी और धीरे धीरे वो सृष्टि पर आते आते उनका रूप बदलता गया और वो सितारे एक एक देवी और देवता का रूप धारण करती गई। ये बाबा ने साक्षात्कार में देखा और फिर देखा कि कैसे एक बहुत सुंदर सोने का महल जिसमें हीरे जवाहरातों से दीवारें जड़ी हुई है, वहां लक्ष्मी नारायण सिंहासन पर विराजमान है और वो धीरे से उस सिंहासन से उठ करके बगीचे में आए और इतनी सुंदर प्रकृति, पांचों तत्वों का इतना सुंदरतम स्वरूप जो बाबा ने कभी पहले नहीं देखा था वो साक्षात्कार में देखा। और एक आवाज आई उनको, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी सृष्टि आनी है और ये दुनिया तुमको बनानी है। ये बाबा ने साक्षात्कार किया, ये आकाशवाणी उनको हुई कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। अब बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा, लेकिन जरूर मुझे कुछ करना है उसके लिए, ये जरूर मन में ठान लिया। क्योंकि एक तरफ विनाश भी देखा, इस कलयुगी सृष्टि का विनाश, और दूसरी तरफ एक सतयुगी दुनिया की स्थापना। तो इतना सारा जो उन्होंने साक्षात्कार किया उनसे वैराग आ गया, बहुत बड़ा वैराग्य इस कलयुगी दुनिया के लिए, और मुझे कुछ ईश्वर के लिए करना है, तो जरूर इतना बड़ा जो उनका फैला हुआ व्यापार था उसको तो समेटना पड़ेगा। तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए, भगवान का उनको आदेश मिला कि आपको एक ऐसी सतयुगी दुनिया बनानी है, पर कैसे बनानी है वो नहीं बताया, पर कम से कम कुछ तो आदेश मिला। तो अपने बिजनेस पार्टनर को उन्होंने कह दिया कि अब मैं ये धंधा आगे नहीं कर सकता हूँ, ये हीरे तो मुझे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, मुझे भगवान महान कार्य करने के लिए निमित्त बना चुके हैं, अब मैं ये व्यापार पूरा करके कुछ और ईश्वरीय कार्य करना चाहता हूँ। तो अपने बिजनेस पार्टनर से छुट्टी लेकर अपना हिस्सा व्यापार का, बिजनेस का, वो वापस लेकर बाबा कलकत्ता से हैदराबाद सिंध चले गए, जो उस समय तो अविभाजित भारत था, 1936 की ये बात है। और जब वो घर में पहुंचे तो घर वाले बाबा को देख करके दंग रह गए कि इतने ठाट से रहने वाले, अंग्रेजों के साथ उठने बैठने वाले राजाओं महाराजाओं के महलों से उनका संपर्क, क्योंकि रानियों के लिए वो श्रृंगार बनाते थे, हार बनाते थे, तो जरूर उनके महलों में जाना होता था, राजाओं से मिलना होता था और अंग्रेजों के साथ भी उठना बैठना होता था। और अचानक बाबा को ये क्या हो गया, इतना परिवर्तन कैसे आ गया जीवन में, ये परिवार वाले भी सुनकर देखकर हैरान हो गए। तो बाबा कमरे में बैठे रहते थे अपने जो घर में, और एकांतवास अपने कमरे में भी करते थे, कि अचानक बाबा को निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने बहुत सुंदर प्रकाश देखा, वो तेजोमय रूप देखा, और धीरे धीरे बाबा ने देखा वो तेज जैसे उनके नजदीक आता गया और उनके अंदर समा गया। ये बाबा ने देखा, अनुभव किया कि वो ज्योति उनके अंदर समा गई, और वो बाबा जैसे अंदर ही अंदर आंखें बंद थी लेकिन अंदर ही अंदर वो तेज देख रहा था, और उनके मुख से परमात्मा शिव के महावाक्य उच्चारण होने लगे, जो उनके परिवार वालों ने देखा। और क्या महावाक्य उच्चारण हुए, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। शिव परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा हैं, कैसे उनके माध्यम द्वारा अपनी पहचान दी कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद चमत्कार होने लगे, क्योंकि जो भी बाबा को देखता था उनसे श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। बाबा खड़े होते थे मानो, तो बाबा को देखते 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 बाबा उज्जवल हो जाते थे और श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हो जाते थे बांसुरी बजाते हुए, और कुछ लोगों को तो घर बैठे भी साक्षात्कार होने लगे। श्री कृष्ण उनको देखते थे और श्री कृष्ण को जैसे उन्होंने देखा तुरंत श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं, और श्री कृष्ण पीछे मुड़ हट गया और बाबा आगे खड़े थे, और श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, और लोग ढूंढ ढूंढ करके बाबा के पास आते थे। तो मानो उस समय इतनी साक्षात्कारों की धूम मच गई, एक क्रांति हो गई थी, जो लोगों को घर बैठे भी ऐसे साक्षात्कार होने लगे, और जो बाबा के सामने आते थे बाबा उनके आगे ओम की ध्वनि करते थे, और ओम की ध्वनि करते करते साक्षात्कार में चले जाते थे, स्वर्ग के दृश्य देखते थे, बहुत ही सुंदर वो अनुभव उनको होता था। मानो एक क्रांति हो गई उस समय, साक्षात्कारों की क्रांति। ये हैदराबाद सिंध छोटा सा स्थान था जहाँ ये परमात्मा का कार्य शुरू हुआ, और फिर तो ये कैसे बढ़ता गया, और उसमें भी अनेक महिलाएं आई, माताएं, कुमारियां, उनको ज्यादा साक्षात्कार होते थे। तो ये भी एक दूसरी क्रांति हो गई, जो कन्याओं माताओं को साक्षात्कार ज्यादा हुआ, वो बाबा के पास आकर्षित होने लगी और वो आती रही, और जैसे आती गई साक्षात्कार होते गए, वो बाबा के पास समर्पित होती गई। तो कुछ उदाहरण है यहाँ, आप ओम राधे, आपका नाम था राधे, तो ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अलौकिक माँ है, हम इनको मम्मा कहते थे। तो उस समय ये 16 साल की थी, और कैसे इनके पिता की मृत्यु हुई थी, अचानक हार्ट फेल हो गए थे, बिजनेस में कुछ घाटा पड़ा तो हार्ट फेल हो गए थे, तो ये माँ बेटी ही रह गई, और इनकी माँ बहुत रोती थी, और ये बेटी तो हैदराबाद सिंध में बहुत फेमस थी, बहुत अच्छे गीत गाती थी, सितार बजाती थी, हारमोनियम, मानो सारे साज जानती थी और गाती थी, डांसिंग बहुत अच्छा करती थी, स्कूल में अवार्ड लेती थी, और अचानक पिता की डेथ हो गई। तो इनकी माँ की जो दशा उस समय थी रोती हुई, वो बच्ची से देखी नहीं गई। तो किसी ने इनको कहा कि आप अपनी माँ को बाबा के पास ले जाओ, वहाँ उनको शांति मिलेगी। तो जैसे ही अपनी माँ के माँ को ले गई बाबा के पास, तो इनकी माँ को बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। और जैसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, जो रोती हुई आई थी इतना जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उनको भगवान का अनुभव हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण की वो बहुत भक्ति करती थी। अब ये उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनको दर्शन हो गए, तो बाबा में इतनी आस्था बैठ गई उनकी, जो माँ बेटी दोनों ही समर्पित हो गए। इसी प्रकार दादी प्रकाशमणि, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 38 वर्षों तक मुख्य प्रशासिका थी, आप भी उस समय 15 साल की थी, आपको घर बैठे साक्षात्कार हुआ, लेकिन आप ब्रह्मा बाबा को जानती नहीं थी, परंतु इनके पिता ज्योतिषी थे, जिन्होंने अपनी बेटी की जन्म पत्री में जाना था कि मेरी बेटी मीराबाई की तरह कृष्ण को अपना जीवन देगी। तो कैसे इनको साक्षात्कार हुआ और ये बाबा के पास पहुंची, और जैसे ही बाबा को देखा वो ध्यान में चली गई और कृष्ण का साक्षात्कार किया, मानो वो भी उसी समय समर्पित हो गए। तो ऐसे देखते देखते कई बहनें, कई माताएं, कन्याएं समर्पित होती गई, और समर्पित होते होते एक ईश्वरीय परिवार बन गया। बाबा ने स्कूल चलाया हुआ था जिसमें कुमारियों को शिक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ साथ दी जाती थी। वो सब भी कैसे बाबा से साक्षात्कार करते थे और सब के सब जैसे समर्पित हो गए, और एक बहुत सुंदर अलौकिक परिवार बन गया। ये अलौकिक परिवार जिसमें परमात्मा पारलौकिक पिता और ब्रह्मा पिता अलौकिक पिता और माँ सरस्वती जगदम्बा, ये शिव परमात्मा ने उनको नाम दिया। थी तो अलौकिक बेटी के रूप में, लौकिक में कोई संबंध नहीं था, लेकिन सब के सब समर्पित हो गए और एक अलौकिक परिवार बन गया। और देखते ही देखते ये अलौकिक परिवार करीब 385-400 भाई बहनों का बन गया, और हैदराबाद से वो कराची चले गए, क्योंकि कराची बड़ा शहर था और हैदराबाद तो छोटा शहर था। तो कराची में इन्होंने एक पूरा कैंपस लिया, और ये 400 बहनें, कुछ भाई भी थे, परिवार भी थे, वो सब पूरा ही दुनिया की निगाहों से दूर एक तपस्या के जीवन में जीने लगे। कराची सागर के किनारे पर है, जैसे मुंबई में जुहू बीच है, इसी प्रकार सागर के पास ही आप रहते थे, तो सवेरे सवेरे सागर किनारे जाते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, तपस्या भी करते थे, और दिन भर उनकी ऐसी तपस्या चलती थी जिनसे उनकी आत्मा में निखार आया, मानो दुनिया की निगाहों से दूर थे। 14 साल 1937 से लेकर 1950 तक, 37 से लेकर 1950 तक 13-14 साल इन्होंने तपस्या की, और उन्हीं 14 सालों में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में, जो 1945 में समाप्त हुआ, और वो कैसे समाप्त हुआ, जब अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया जापान पर, तब जापान ने वो जापान हार गया, हिटलर हार गया, बहुत सारा दूसरे विश्व युद्ध की कई गाथाएं हैं, कई इतिहास है, और उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और भारत में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और कराची सिंध का एरिया है तो वो पाकिस्तान में चला गया, और ये बहनें जो 400 बहनें थी वो वहीं पर थी, लेकिन परमात्मा ने इनकी बहुत रक्षा की, इनका बाल भी बांका होने नहीं दिया, और ये तपस्याई करती रही वहां कराची में। और जिस समय 1950 में भारत गणतंत्र बना तब परमात्मा ने इनको आदेश दिया कि अभी भारत में जाओ, भारत ही विश्व गुरु बनना है, भारत ही विश्व को शांति का मार्गदर्शन देगा, भारत ही लाइट हाउस बन करके फिर इससे इस संसार को स्वर्ग बनाएगा, इसलिए भारत में जाओ और भारत में भी एक पहाड़ पर जाओ, ये परमात्मा का आदेश मिला। तो माउंट आबू में आना हुआ, ये भी कैसे विचित्र कहानी है। माउंट आबू में आए, माउंट आबू उस समय राजाओं का स्थान था, यहाँ पर बहुत सारे राजस्थान के कई छोटे मोटे राजाएं थे जो माउंट आबू में गर्मी के दिनों में आकर के रहते थे, तो कई महल बने हुए हैं माउंट आबू में जहाँ राजाएं आकर के रहते थे। तो 1950 में राजाई तो खत्म हो गई, भारत प्रजातंत्र बन गया, तो इन्होंने उन जो महल थे उनको होटल बना दिया है या हॉस्टल बन गए हैं या स्कूल बन गए हैं। आप माउंट आबू जाएंगे तो वो सब पता चलता है वहां। तो माउंट आबू में स्थानांतरित हुए, कैसे आए ये भी एक बहुत वंडरफुल कहानी है, तो वो तो इतिहास है, वो तो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के सुनना। लेकिन माउंट आबू में आना 14 वर्ष की तपस्या के बाद, और माउंट आबू में उन्होंने फिर तपस्या की, और फिर कैसे वहां से जब निकले भी माउंट आबू आने के लिए तो सब कुछ लेकर के आए, कुछ भी वहां छोड़ा नहीं। उनको एक जहाज दिया गया था जिस जहाज में सारा सामान लेकर के वो भारत में आए। ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, वहां पर ये जहाज उतरा और वहां से बाय ट्रेन फिर आबू आए। ये ट्रेन 1950 की ट्रेन है, उस समय जैसे आज की ट्रेन है वैसी नहीं है, तो खुले आम खिड़कियों से देख सकते थे। तो 14 साल के बाद उन्होंने दुनिया देखी और आबू में आकर के अपना स्थान लिया। तो ये आबू रोड स्टेशन है, वहां से फिर माउंट आबू आए। तो माउंट आबू में भी बाबा ने आकर के बहुत तपस्या की, मम्मा ने भी तपस्या की, और दोनों हमारे अलौकिक माता पिता ने तपस्या के बल से वो शक्ति प्राप्त की। और 1952 में आबू से बाहर जाकर के सेवाएं की और वहां से भाई बहने माउंट आबू आने लगे। तो ये बहुत सारे चित्र हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, समय काफी हो गया है। तो ये कैसे बहने वहां भारत के कोने कोने में गई और वहां सेवा केंद्र खुले और धीरे धीरे वहां के लोग माउंट आबू आने लगे। तो माउंट आबू एक ऐसा तीर्थ स्थान बन गया। मम्मा भी फिर बाहर जाती थी, ये लखनऊ का स्थान है जहाँ पर मम्मा के आगे बहुत सारे भाई बहने हैं। कानपुर में गए, यूपी में बहुत जाना हुआ, आपको हमारे पूर्व प्रोग्राम में यूपी की बातें सुना रहे थे, तो शुरू से ही यूपी में हमारे बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, सब जगह है। अभी तो भारत में लगभग 10,000 सेवा केंद्र हैं अपने, जहाँ पर ये ईश्वरीय सेवाएं होती है, और विश्व के कोने कोने में 140 देशों में। तो आप सोच सकते हैं ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहां आप आए हैं। और मम्मा की भी जो तपस्या थी वो तो अवर्णनीय है। मम्मा के साथ दादी प्रकाशमणि जी भी अक्सर जाया करते थे, उनको भी हम जैसे मम्मा की साथी मानते थे, पूरी मम्मा की तरह ही आपका हर प्रकार का आचरण था। मम्मा धीरे 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 विदेश स्थिति को प्राप्त करती गई और 1965 में 46 वर्ष की उम्र में आपने अपना देह त्याग किया, माउंट आबू में ही देह त्याग किया। और उसके बाद दीदी मनमोहिनी वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, क्योंकि शुरू से ही परमात्मा ने बहनों को आगे किया, क्योंकि बाबा कहते थे कि जब नारी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी तब इस संसार का उद्धार होगा। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। तो परमात्मा ने शुरू से ही बहनों को आगे किया। तो मम्मा के बाद दीदी मनमोहिनी आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी, आपकी भी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, वो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के सुनना। और दीदी मनमोहिनी ने 1983 में अपना देह त्याग किया, लेकिन बाबा 65 के बाद फिर बाबा भी निकलते थे, दिल्ली में बहुत बाबा का जाना हुआ, मुंबई में तो हर साल बाबा आते थे, और माउंट आबू में भी भाई बहने जाते रहते थे। अलौकिक मात पिता का प्यार मिला, परिवार मिला, बहुत कुछ ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे फलता फूलता गया। ये कुछ दृश्य हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि परमात्मा तो एक है। ब्रह्मा बाबा कोई हमारे, हम उनको भगवान नहीं कहते, बाबा भी यही कहते थे परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो सदा शिव है। तो कई कहते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा फिर आपकी क्या लगते हैं, हम इनको भगवान नहीं कहते, हम इनको गुरु भी नहीं मानते, ये गुरु भी नहीं है, कोई गुरु की गद्दी नहीं है, लेकिन ये हमारे अलौकिक पिता हैं। अलौकिक, जिस अलौकिक पिता के द्वारा परमात्मा जो निराकार है, सबका पिता है, वो इस सत्युगी दुनिया की स्थापना करने अर्थ और परमात्मा ने ये यज्ञ रचा है। तो फिर तो कैसे बाबा पालना करते थे, बहुत पत्र लिखते थे, मुझे भी बाबा ने एक पत्र लिखा था, मुझे वो याद है इसलिए ये जोड़ा है। 1967 में बाबा ने मुझे पत्र लिखा था, क्योंकि मैंने बाबा से पूछा था, उस समय मैं इंटर साइंस में थी 1967। तो जब बाबा को मैंने पत्र लिखा कि घर में सब कह रहे डॉक्टर बनो तो मेडिकल लाइन लो, इंटर साइंस में थी मैं, लेकिन बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची बाबा की आप में बहुत आश है आपके प्रति, इसलिए बाबा चाहते हैं आप रूहानी डॉक्टर, आत्माओं का डॉक्टर बन के आत्माओं की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे पत्र में लिखा। तो उसके बाद मैंने ये संकल्प किया कि मैं भी इसी कार्य में लग जाऊंगी। फिर तो 2 साल तो पढ़ाई की, बीएससी कंप्लीट की, बैचलर ऑफ साइंस किया 69 में, और 69 में ही कैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। लेकिन ये बाबा के हस्ते पत्र हैं जो बाबा ने हमको लिखा था, और उसी पत्र को हमने डाला है। और ये पांडव भवन जो बाबा का मेन स्थान है, वहाँ बाबा रहते थे, बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा बैठ करके पत्र लिखते थे, उसी झोपड़ी के आसपास बहुत सारे, बहुत बड़ा सुंदर बगीचा है। आप माउंट आबू जाएंगे, पांडव भवन जाएंगे तो जरूर देखेंगे। ये हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा बैठ करके वाणी चलाते थे, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो हम सभी सेंटर्स पर सुनते रहते हैं। और इसी हॉल में लगभग 200 भाई बहने बैठ सकते हैं, और जो पांडव भवन के निवासी हैं वो यहाँ पर अपनी क्लासेस करते रहते हैं। ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, बहुत सिंपल, एक खटिया बस और नीचे दरी जहाँ पर बाबा बैठ करके, गद्दी जहाँ बाबा बैठते थे और बच्चों से मिलते थे। और 18 जनवरी 1969 को 93 वर्ष की उम्र में बाबा ने अपना देह त्याग किया, अपने ही कमरे में बाबा बैठे थे, और कैसे एक सेकंड का खेल था और बाबा अव्यक्त वतनवासी बने। और उसके बाद कैसे बाबा की ही स्मृति में पांडव भवन में ये शांति स्तंभ बना है, जिनको हम, जो बाबा की समाधि है आश्रम के अंदर ही है, आप पांडव भवन देखेंगे तो ये भी जरूर देखेंगे। और जो शिव परमात्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा ने इनके माध्यम से जो महावाक्य उच्चारण किए, वो चारों ओर लिखे हुए हैं। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा का ही यादगार स्थान शांति स्तंभ है, जहां 18 जनवरी हर साल हजारों भाई बहने आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन ब्रह्मा बाबा को अर्पित करते हैं। तो ये चार धाम हैं, ब्रह्मा बाबा के चार धाम, जो पांडव भवन में आप जाकर के देखेंगे, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी और बाबा का कमरा। तो सभी जाकर के देखते हैं, आप भी जाना, कई तो होकर के भी आए हैं, हम भी वहीं रहते हैं, वहां से नीचे शांतिवन में आते हैं। तो 69 के बाद कैसे दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका के रूप में रही और 69 से लेकर के 2007 38 वर्षों तक मुख्य प्रशासिका के रूप में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। और प्रकाशमणि दादी जी के साथ दीदी मनमोहिनी, जो मम्मा के बाद एडमिनिस्ट्रेशन संभाला बाबा के साथ, वो दोनों ने मिल करके कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। हम इनको कहते थे दो हंसों का जोड़ा, दो शरीर थे लेकिन जैसे एक आत्मा, इनका आपस में इतना मेल था। तो हम कहते थे दीदी और दादी, तो दीदी मनमोहिनी थी और दादी माना बड़ी बहन, उनको हम दादी कहते हैं। सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं और बड़े भाई को दादा कहते हैं। हिंदी में तो ग्रैंडफादर को दादा और ग्रैंडमदर माना दादी, पिता की माँ को कहते हैं, लेकिन सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, हिंदी में दीदी कहते हैं। तो हम दीदी दादी हम इनको कहते थे, जिन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलके संभाला। तो दीदी दादी के साथ अन्य कई दादियां थी, जो वरिष्ठ बहनें, जो हम सबके लिए प्रेरणा की स्रोत थी, जिन्होंने 14 साल तपस्या की। और उसके बाद 69 के बाद 70 से विदेशों में हमारी सेवाएं शुरू हुई और 74 में पहला ग्रुप विदेश लंदन से माउंट आबू में आया और फिर तो चारों ओर विदेशों में सेवाएं शुरू हुई। 1983 में पांडव भवन के सामने ही ओम शांति भवन बना, जहां हम लोगों के बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी माउंट आबू में। एक बहुत सफल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस के कितने महामंडलेश्वर आए थे। उस प्रोग्राम में विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन किया था। तो कैसे इसी स्थान पर जहां 3000 भाई बहने बैठते हैं, माउंट आबू में इतना बड़ा हॉल है। फिर 4 किलोमीटर दूरी पर माउंट आबू में ज्ञान सरोवर है, जो हमारी एकेडमी है, अलग अलग हमारे जो प्रोफेशनल विंग्स है उनके कार्यक्रम होते हैं। और अपना ग्लोबल हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में 60% डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और गांव गांव में जाकर के फ्री सेवाएं देते हैं। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बहुत हमारे ट्रस्ट हैं जहां से सहयोग मिलता रहता है। और ये जो शांति वन है, ये 96 में बनाया गया और 96 में ही इस हॉल का निर्माण हुआ था, जिसको डायमंड जुबली हॉल कहते हैं, क्योंकि उस समय 60 वर्ष हुए थे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। तो 96 और 2016 मानो 21 साल से ये आप हॉल देख रहे हैं, जहां 20,000 से भी अधिक भाई बहने बैठ सकते हैं। ये इस विशालता इस हॉल की है, जो बिना पिलर्स का आप ये हॉल देख रहे हैं, कितनी इंजीनियरिंग वर्क हुआ होगा, जो बिना किसी पिलर के स्तंभ के ये खुला हॉल सबके लिए तैयार किया गया है, जहां हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते ही रहते हैं। और दादी प्रकाशमणि जी ने 69 से ये कारोबार संभाला और 2007 25 अगस्त को दादी जी ने 85 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया और इसी हॉल के आगे प्रकाश स्तंभ बना है जो दादी जी की याद में है। यही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। समाधि स्थल है दादी प्रकाशमणि जी का। और वर्तमान समय दादी जानकी जी जिनसे आप कल मिले, 102 साल के आप दादी जी हैं, और कैसे बाबा इनके द्वारा कार्य कराते हैं। सचमुच ये ईश्वरीय शक्ति ही कार्य कर रही है। दादी जी खुद कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, जो इतना बड़ा विशाल जो परमात्मा का कार्य चल रहा है वो आप देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है, हमारी बहनें जो समर्पित है उनकी भी ट्रेनिंग, कुमारियों की ट्रेनिंग, और कैसे इतनी बहनें समर्पित हो रही है जो अलग अलग सेवा केंद्रों पर रहती है। और दादी जी करीब 100,000 की सभाओं में भी जा करके भाषण करते हैं, अभी तक यात्राएं करते हैं, न जाने कितनी बार विश्व यात्रा की होगी उन्होंने। अभी भी पिछले साल, इसी साल लंदन भी होकर के आए, जाते रहते हैं, और तो परमात्मा की शक्ति उनको मिलती है। और दादी जानकी के साथ हमारी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी हृदय मोहिनी जी हैं, जो 9 साल की उम्र में आई थी 1936 में, और कैसे इनको दिव्य साक्षात्कारों की देन है। परमात्मा को कैसे ये अनुभव करती है, देखती है, और अभी भी शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रविष्ट होते हैं, और हम सब अव्यक्त वाणी सुनते हैं। वो अव्यक्त वाणी हमारी सभी जगह जाती है, डिले होता है हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल में। तो जो देखते होंगे, कई देखते होंगे सेवा केंद्रों पर, या अपना पीस ऑफ माइंड चैनल हमारा जो 24 घंटे का चलता है उसमें भी देखते होंगे, जिन्होंने ये अव्यक्त बाप दादा का कार्यक्रम पीस ऑफ माइंड चैनल में देखा है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़ों ने देखा है, लेकिन अवश्य यहाँ ही इसी स्थान पर ये कार्यक्रम होते हैं। आप भी अगर आना चाहें अवश्य आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हम लोगों के नियम हैं, उन नियमों का अगर पालन करते हैं तो अवश्य आप यहाँ आ सकते हैं। हजारों भाई बहने आते हैं, ये ईश्वरीय परिवार है, एक पिता परमात्मा की हम सब संतान हैं, और एक ही लक्ष्य लेकर के आगे चल रहे हैं कि कैसे स्व परिवर्तन से सारे विश्व का हमें परिवर्तन करना है, और इसी भारत भूमि खास और विश्व आम सारी दुनिया को परिवर्तित कर सतयुगी दुनिया बनाना है। यही हम सबका लक्ष्य है, क्योंकि दुनिया तो खत्म नहीं होगी, वो तो सदा है ही, लेकिन ये बदल कर सतयुग बन जाए, मानव देव बन जाए, नर नारायण बन जाए, नारी श्री लक्ष्मी बन जाए, यही हमारे इस विश्वविद्यालय का महान लक्ष्य है। और ये भारत फिर से स्वर्ग बन जाए, और हम सब उसी में शामिल हो, और यह दुनिया में फिर से खुशहाली आ जाए, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबने इतना धीरज रखा, 10 बजे से आप यहाँ बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम फिर एक मिनट के लिए शांति में बैठेंगे, फिर भोजन करने जाएंगे।
सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट है, 1-2 मिनट के लिए बैठ जाए, 2 मिनट परमात्मा को याद करके फिर उठे।